नमस्कार मेरे घनिष्ठ मित्रों, दोस्तों, आज मैं बजट वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा और आइए इसी पर कुछ और बात करते हैं। और आज शुरुआत करना चाहूंगा मैं पूंजीगत व्यय से, और इसलिए क्योंकि पूंजीगत व्यय की समझ आप में बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और प्रीवियस ईयर्स के जब आप प्री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो पूंजीगत व्यय के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, कई सालों तक पूछे गए हैं, बीच बीच में पूछे जाते हैं। दोस्तों, खासकर जब हम बजट की बात करते हैं तो आम तौर पर सामान्य रूप से बजट के दो भाग होते हैं, या यूं कह लीजिए कि दो प्रकार होते हैं। एक होता है राजस्व बजट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, रेवेन्यू बजट, और दूसरा होता है पूंजीगत बजट। और आज मैं पूंजीगत बजट के तहत ही कुछ बातें आपसे करने जा रहा हूं। देखिए, जब बजट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें दोनों बातें आ जाती हैं, और इससे आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित भी हैं कि कमाई कितनी होगी और उसमें से खर्च कितना होगा, कहां कहां से कमाई होगी और कहां कहां खर्च किया जाएगा। यही बजट में पूरी तरह से बताया जाता है, विस्तार के साथ बताया जाता है। जब हम कह रहे हैं पूंजीगत बजट, देखिए, यहां मैं पूंजीगत व्यय की बात नहीं कर रहा हूं, पूंजीगत आय की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जरा सा भी आप ध्यान भटकाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं पूंजीगत बजट की बात कर रहा हूं। साफ है कि जब हम पूंजीगत बजट की बात कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि पूंजी से हमें आय कितनी मिल रही है, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में हम कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट्स, और फिर हम पूंजीगत व्यय कितना कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है कि सरकार जो भी कमाती है उस कमाने के भी दो अलग अलग हिस्से हो गए, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स, टैक्सेस से उसे कितना पैसा मिल रहा है, और दूसरा हो गया पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजी से उसकी कमाई कितनी हो रही है। तो देखिए, जब हम कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां तो इसे ध्यान से सुनिएगा कि किन किन रिसिप्ट्स को, यानी कि किन किन प्राप्तियों को हम इसमें शामिल करते हैं, कौन कौन सी प्राप्तियां आती हैं। दोस्तों, सरकार जो है बकायदे बॉन्ड लेती है, ट्रेजरी बिल, ये सब बेचती है, बॉन्ड बेचती है, ट्रेजरी बिल आदि बेचती है। ये बॉन्ड क्या है और ट्रेजरी बिल क्या है, इसके बारे में अब आपको अलग से थोड़ा सा समझना होगा। अगर मैं ये बताने लगूंगा तो थोड़ा से भटकाव की स्थिति आ जाएगी। तो ये बेसिकली बॉन्ड और ट्रेजरी बिल वगैरह जो सरकार बेचती है, इसे आप कह सकते हैं कि इसके जरिए सरकार सार्वजनिक रूप से ऋण लेती है, पब्लिक से ऋण लेती है, लेकिन धन तो प्राप्त कर रही है। तो बॉन्ड और ट्रेजरी बिल वगैरह भी पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत ही आती है। विदेशी जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आप कह लीजिए, या विदेश के जो सरकारें हैं उनसे जो ऋण लिया जाता है, देखिए आप कह सकते हैं कि यह ऋण लिया जा रहा है लेकिन धन तो आ रहा है ना, तो इसे भी बकायदे उस साल के पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल किया जाता है। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में जो पैसा आता है वो सरकार के पास आता है, ये भी पूंजीगत प्राप्ति का ही हिस्सा होता है। और ठीक इसी प्रकार से, जिसकी इस बार के बजट में काफी चर्चा है, और वह है कि सरकार की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जिन्हें हम सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं, सरकार उन सार्वजनिक उपक्रमों को डिसइन्वेस्ट करती है, या तो पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर देती है, प्राइवेट लोगों को बेच देती है, या उसके कुछ शेयर्स बेच देती है। जैसे आप एयर इंडिया के बारे में देखिए तो सरकार उसको पूरी तरह से बेच रही है कि ठीक है कोई दूसरी कंपनी खरीद ले, या फिर उस कुछ शेयर बेचने की बात कहती है कि हम इतने प्रतिशत शेयर इस कंपनी के बेचेंगे। जैसे इस बार के बजट में आपने देखा है ना कि कहा जा रहा है कि जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं उसके कुछ शेयर्स डिसइन्वेस्ट करेगी सरकार, बेचेगी, आईपीओ लेकर के आएगी। इस तरीके से सरकार के बारे में कहा जाता है, सरकार अपने बारे में घोषणा करती है। इससे जो धन मिलता है उसे भी हम कैपिटल रिसिप्ट्स के अंतर्गत लेते हैं। तो दोस्तों, ये है कैपिटल रिसिप्ट्स, राइट। अब इसके बाद फिर जो दूसरा आता है वो है पूंजीगत व्यय, यानी कि हमने इतना धन तो कमा लिया, ले लिया, कमाया नहीं बल्कि लिया है। याद रखिए, ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमने लिया है। अब हम इस धन को व्यय करेंगे, खर्च करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि जो हमने पूंजीगत धन लिया है उसको हम पूंजीगत व्यय में ही करें, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अपने बारे में निर्णय लेती है कि वो कहां कहां खर्च करेगी, किन किन चीजों में लगाएगी, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो अब जो पूंजीगत व्यय है, देखिए पूंजीगत व्यय की परिभाषा क्या है, ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। वह खर्च जिससे आपकी संपत्तियों का निर्माण होता है, संपत्तियां बनती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने बैंक से ऋण लिया है, बैंक से आप कई कारणों, कई उद्देश्यों से ऋण ले सकते हैं। आपने मकान बनाने के लिए ऋण लिया है, आपने मकान बनाया तो आपका पैसा खर्च हो गया, लेकिन आप देखिए कि मकान से संपत्ति का निर्माण हो गया, वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई है, उसकी कीमत है, आगे चल करके बढ़ सकती है, जो भी हो सकता है, लेकिन वो धन खर्च नहीं हुआ है, उसने आपके लिए संपत्ति तैयार की है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि आप बैंक से कार के लिए लोन लेते हैं। अब कार के दो रूप हो सकते हैं, दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो यह कि आप अपने घर के यूज के लिए कार ले रहे हैं, तो यह पूंजीगत व्यय नहीं होगा। लेकिन अगर आप टैक्सी के रूप में चलाने के लिए कार ले रहे हैं, तो ये आपके लिए एक संपत्ति हो गई है ना, उससे आप अर्न करेंगे, धन कमाएंगे, तो वह एक प्रकार से पूंजीगत व्यय हो जाएगा, यानी कि जिससे आपकी संपत्तियों का निर्माण होता है। अब केंद्र सरकार कहां से पूंजीगत व्यय करती है, किन किन क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय को हम इसके तहत मानेंगे, तो आइए कुछ बातों को देख लेते हैं। जैसे आप देखिए कि सरकार कुछ बांध बना रही है, सड़कें बना रही है, मेट्रो बना रही है, इस तरह से अब जगह जगह बन रही हैं, तो सरकार उनके लिए भूमि अधिग्रहण करती है, एक्वायर करती है जमीन, और उसके लिए मुआवजा देती है, पैसे देती है। तो अब ये पैसे तो सरकार के पास से जा रहे हैं, लेकिन जो चीज बनेगी वह संपत्ति बनाएगी, परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। तो भूमि अधिग्रहण के ऊपर जो खर्च किया जाता है वह पूंजीगत व्यय में आएगा। सरकार कोई भी काम कर रही तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रही है, तो वो बिल्डिंग्स जो बना रही है वो संपत्ति है। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो आर्थिक मजबूती है, वो सिर्फ इस कारण से है क्योंकि उसके जो भवन है, जो ऑफिसेज है, वो बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है, शहरों में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है, और उसकी उसकी कीमत आज पता नहीं, न जाने कितना है। मैकडोनाल्ड भी यही कहता है कि हमारी जो रियल कमाई है वो कोई ये सब बर्गर वर्गर बेचने में नहीं है, हमारी जो रियल कमाई है वो तो हमारी दुकानें और हमारे जो आउटलेट हैं कहाँ पर बने हुए हैं, यानी कि रियल एस्टेट में। तो ये जो भवन निर्माण होता है, मान लीजिए कि आप कोई फैक्ट्री लगाना चाह रही है सरकार, तो उसने एक भवन बनाया है और इसके बाद उसके लिए मशीन खरीद रही है, तो ये मशीन भी फिर उसी तरह से पूंजीगत व्यय हो गया। जैसे कि मैंने टैक्सी चलाने के लिए कार का उदाहरण दिया था, अगर सरकार शेयर खरीद रही है, शेयरों में निवेश कर रही है, इसी तरह से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जो केंद्र सरकार है वो ऋण देती है, तो बकायदे यह ऋण भी पूंजीगत व्यय में होगा क्योंकि वो वापस आएगी और जो उसने ऋण दिया उस पर उसको ब्याज भी मिलेगा। ठीक इसी तरह से सरकार जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उनको भी समय समय पर ऋण देती है, या किसी को भी वो ऋण देती है सरकार, तो ऋण दे रहे हैं आपके पास से पैसा जा रहा है लेकिन वो वापस आएगा, कमाई करके वापस आएगा क्योंकि उस पर आपको ब्याज मिलेगा। तो ये इस तरह के जो भी खर्च है फ्रेंड्स, ये कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसीलिए बजट को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जगह जगह पर यह वाक्य पढ़ने को मिल सकता है कि सरकार अगर पूंजीगत व्यय को खूब बढ़ाती है तो उसे वेलकम किया जाएगा। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात हुई। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च होता है, याद रखिए वो पूंजीगत व्यय के तहत आता है, क्योंकि ठीक है अभी आप सड़कें बना रहे हैं, बंदरगाह बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, अभी तो आपको लग रहा है कि इतना बड़ा खर्च हो गया, लेकिन इससे इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिल रहा है, और फिर आगे चल करके उससे कितनी मदद मिलेगी अर्थव्यवस्था को, आर्थिक एक्टिविटीज को। तो इन सब को पूंजीगत व्यय कहा जाता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये मालूम होना चाहिए। ये केवल सरकार के लिए नहीं होता है, ये हम सबके लिए भी होता है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारा व्यय जो है पूंजीगत जितना ज्यादा होगा, जिससे हम परिसंपत्तियों का निर्माण करेंगे, भविष्य में उतनी ही हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। यही राष्ट्र के बारे में भी होता है। अब आप देखिए, मैंने कहा कि बजट दो प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार की आय हो गई आपके पास, अब दो प्रकार के खर्च हो गए। अब इन टोटल को मिलाइए तो बड़ा मजा आएगा आपको, और इसी के साथ ही मैं अपनी बात खत्म भी करना चाहूंगा। तो हमारे इस साल का जो राजस्व व्यय है कल मैंने आपको राजस्व व्यय के बारे में बताया था, उसको याद करने की कोशिश कीजिए, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। जो हमारा कुल राजस्व व्यय है 2021-22 की बजट में वह है 29,29,30, यानी कि 29,29,000 करोड़ रुपए, मोटे तौर पर 29,00,000 करोड़ रुपए आप कह लीजिए। और हमारा जो पूंजीगत व्यय है वो है 5,54,236 को निकाल दीजिए, चलिए 5,54,000 करोड़ रुपए, यानी कि 29,29,000 करोड़ रुपए जो है हमारा राजस्व व्यय है। अब आप देखिए कि हम एक्सपेंडिचर, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, कितना हम खर्च कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए। कल मैंने आपको एक डेटा दिया था, वो था 34.83 लाख करोड़ रुपए, ये हमारा कुल खर्च है। कुल खर्च हम जो करेंगे है 34,83,000 करोड़ रुपए, और ये जो टोटल है इसमें से 29,29,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं राजस्व व्यय में, और पूंजीगत व्यय में हम कर रहे हैं 5,54,000 करोड़ रुपए। आप देखिए कहां 29 और कहां 5, जब आप 29-5 इन पूरे को जोड़ देंगे तो आपके पास जो आंकड़ा आएगा बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा आ जाएगा, 34,83,000 करोड़ या 34.83 लाख करोड़, आप जो भी कहना चाहें आ जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि बजट के बारे में ये जो हमने थोड़ी सी बातें की हैं ये अब बजट को सरल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, और शायद आप ऐसा महसूस भी कर रहे होंगे। यदि आप मुझे अपने फीडबैक से अवगत करा सकेंगे तो ये मेरे लिए बहुत ही मार्गदर्शन का काम करेगा। एक अंतिम छोटी सी घटना वो ये है दोस्तों कि चौरा चौरी के 100 साल पूरे होने वाले हैं, 100 साल इसमें पूरे के पूरे आयोजन होंगे। आपको मालूम है कि गोरखपुर का ये एक छोटा सा कस्बा जैसा था चौरा चौरी, उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा हुआ था, तो ये वहां पर कुछ लोग जो स्थानीय पुलिस थे उनके साथ उनकी झड़प हो गई स्थानीय लोगों की। पुलिस जब आप कह लीजिए पत्थरबाजी और गोलीबारी होने लगी तो कुछ नागरिक मारे गए, नागरिक जो है ना आक्रोश में भर गए, वो जब गुस्सा हो गए तो जो पुलिस वाले थे वो थाने में चले गए थाने में अपने को बचाने के लिए, और फिर जो पब्लिक थी उसने थाने में आग लगा दी, जिसे इतिहास में चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है कांड, अब कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि नहीं इस कांड शब्द को बदला जाना चाहिए क्योंकि जो कांड शब्द है वो निगेटिव है, जबकि यह तो एक आंदोलन की घटना थी। खैर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही गांधी जी को पता लगा कि चौरा चौरी में इस तरह की हिंसा हुई है जहां जिसमें 20 से अधिक लोग मारे गए हैं, तो गांधी जी ने कुछ ही दिनों के बाद जिस दिन यह घटना हुई थी और 8 दिन के बाद जो पूरे देश में जो उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको उन्होंने स्थगित कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मेरा जो आंदोलन है वो अहिंसात्मक है और उस आंदोलन में हिंसा हो गई है, और इसको लेकर के कुछ लोगों ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। गांधी जी को समझाने की कोशिश की गई कि आप बापू ऐसा मत कीजिए, लेकिन गांधी जी का चूंकि आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक था उन्होंने अपने ढंग से इसके बारे में जो भी निर्णय लिया हो जो भी सोचा हो, लेकिन असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। मुझे लगता है कि इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ना है, और चूंकि सौवां साल चल रहा है तो मुझे लगता है कि इतिहास के विषय के तहत आप इसे एक मुख्य टॉपिक मान सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आता हूं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट पर जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनका नाम है अंकित राजपूत। अंकित आपका बहुत बहुत स्वागत है, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम है दीपक कुमार ललितपुर उत्तर प्रदेश से, लोवे सिंह, श्वेता राज और कुसुम जोशी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं, नमस्कार।